बौद्ध दर्शन बुद्ध ईश्वर लोक जीव मृत्यु आदि के पश्चात किसी सत्ता संबंधी विवेचन में उलझना नहीं चाहते थे। इसी से उन्होंने ऐसे किसी प्रश्न पर कुछ भी नहीं कहा, वह मौन हो जाते थे, जिससे उनका धर्म पक्ष और विपक्ष के विवेचन के थपेड़ों में घूमता न रहे। उन्होंने कहा था, भिक्षुओं इसे कहते हैं मतों का दिखावा, फंदा, बंधन आदि। जिसने इन मतों से बंधकर सधर्म को सुना, वह जन्म, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त नहीं होता, वह दुख से पार नहीं होता। अतः जिसे आज बौद्ध दर्शन कहते हैं, उस प्रकार का कोई चिंतन बुद्ध का नहीं था। यह दार्शनिक चिंतन बुद्ध के बाद की देन है। उनकी दृष्टि में धर्म ही मनुष्यों में श्रेष्ठ है, इस जन्म में और पर जन्म में भी। क्षणिकवाद। धम्म पद में कहा गया है, जो नित्य तथा स्थायी लगता है वह नाशवान है, जो महान लगता है उसका भी पतन होगा। इस प्रकार संसार में सभी कुछ जड़ चेतन है, अनित्य है, सागर के जल की तरह चलायमान है, परिवर्तनशील है, उसमें कार्य कारण संबंध है। तभी बुद्ध ने कहा था कि जो नाशवान है उसका नाश अवश्य होगा। उन्होंने न किसी वस्तु को न केवल स्थायी सत्य, न केवल नाशवान असत, बल्कि उन्हें परिवर्तनशील कहकर दोनों अतियों का समन्वय किया। इसी परिवर्तनशीलता या अनित्यवादी बुद्ध के विचार को क्षणिकवाद कहा गया है। यहाँ अनित्यता से भी अधिक भारी शब्दों में सभी वस्तुओं को क्षणिक माना गया। अतः सभी संसारी वस्तुएं क्षणभंगुर हैं, वे क्षण क्षण में रूप बदलती हैं। जो वस्तु एक समय एक कार्य करता है वह दूसरे समय दूसरा कार्य करता है। इस प्रकार पहले वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे बीज मिट्टी में डालने पर उससे पौधा निकलता है, जो प्रतिक्षण बदलता जाता है, इसी प्रकार संसार भी प्रतिक्षण बदलता है। यह एक क्षणिकवाद है। इस तर्क को अर्थ क्रिया कारित्व अर्थात किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति कहते हैं, जो सभी वस्तुओं में होती है। कोई भी वस्तु इस आधार पर दो क्षणों में एक समान नहीं रहती, पर इसकी निम्न आलोचनाएं की गई हैं। एक, यदि कोई वस्तु क्षण मात्र ही रहेगी फिर बदल जाएगी तो कार्य कैसे करेगी, फिर कार्य कारण संबंध वहाँ कैसे होगा, फिर कार्य को शून्य से उत्पन्न मानना पड़ेगा, जो कार्य कारण संबंध का खंडन करता है। दो, कार्य कर्म का संबंध इससे खंडित होता है, क्योंकि कर्म का फल मिलता है, पर यहाँ कर्ता जब कर्म करते हैं करते ही बदल जाता है तो फल कैसे और कौन प्राप्त करेगा। तीन, इससे निर्वाण का सिद्धांत खंडित होता है, दुख से छुटकारा निर्वाण है, पर प्रयासरत व्यक्ति जब दूसरे क्षण बदल जाएगा तो किसका और कैसे छुटकारा या निर्वाण होगा। चार, स्मृति और प्रतिविज्ञा की व्याख्या भी इसके कारण खंडित होती है, क्योंकि क्षणिकवाद में स्मरणकर्ता और पहचाना जाने वाला व्यक्ति कार्य पूर्ण होने के पहले ही बदल जाएगा। अनात्मवाद, बुद्ध का मत है कि विश्व में न कोई आत्मा है और न आत्मा की तरह कोई और वस्तु। पांचों ज्ञानेंद्रिय, मन तथा मन की वेदनाएं आत्मा से रहित हैं। यही बुद्ध का अनात्मवाद है। पर दूसरे दार्शनिक आत्मा को नित्य स्थायी मानते हैं, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में मरने पर चली जाती है, वह मरती नहीं। यही पुनर्जन्म का सिद्धांत है। बुद्ध ने आत्मा को अस्थायी मात्र कल्पना और हास्यास्पद विचार कहा है। उन्होंने इसे विज्ञान का प्रवाह कहा है। जैसे प्रवाहित जल के बूंद में एक मैता होने पर भी वह बदलता रहता है, बौद्ध दार्शनिक नागसेन ने कहा है कि शारीरिक पांच स्कंधों से अलग कुछ नहीं है, आत्मा कोई अलग तत्व नहीं है। जैसे रथ जो पहिया, आसन, घोड़ा आदि के मिलने पर उसे रथ कहते हैं, इससे अलग रथ कुछ नहीं है। बुद्ध ने भी सारनाथ में पंचवग्गीय भिक्षुओं को उपदेश के समय बताया कि पांचों स्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान में से कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि ये नश्वर तथा रोगाधीन हैं। फिर अमर आत्मा कैसे होगी। इसी से उन्होंने आत्मा विषय पर विचार करने को मना किया था, अपने धर्म को अमनसीकरणीय धर्म बताया। ऐसा सोचने का कारण था कि यदि आत्मा की स्थिति बताते तो लोगों में अपने प्रति आसक्ति होती, जो दुख का कारण है। यदि न बताते तो जीवन से निराशा होती कि अपना कुछ नहीं है। इसी से वह इस झगड़े से बचने के लिए स्वयं मौन हो गए। इसकी आलोचना की गई है। एक, बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ऐसा आदेश फिर क्यों दिया? आत्मदीप होकर विहार करो, आत्मशरण अनन्य शरण हो। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस आधार पर माना कि बुद्ध का आत्मा में विश्वास था, पर ऐसा नहीं है। यहाँ आत्मा का प्रयोग लौकिक भाषा में किया गया है। आत्मदीप का अभिप्राय है अपने पर निर्भर हो। दो, इसके मानने पर पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे होगी जिसे बुद्ध मानते हैं? यहाँ पुनर्जन्म से अभिप्राय है आत्मा का एक शरीर से दूसरे में प्रवेश करना नहीं, बल्कि विज्ञान प्रवाह की तरह एक प्रवाह की समाप्ति पर दूसरे का प्रारंभ। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही एक जीवन की समाप्ति पर दूसरे जीवन का प्रारंभ होता है। अनीश्वरवाद। बुद्ध ने सृष्टिकर्ता ईश्वर को मानना अनुचित बताया है। इनकी दृष्टि में यह संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, तो फिर एक ऐसी सत्ता को इसका कर्ता कैसे बताया जा सकता है जिसे कहा जाता है कि वह नित्य और अनश्वर है। अतः यह सृष्टि उत्पत्ति और विनाश के नियम पर आधारित है। ईश्वर स्वयं पूर्ण माना जाता है, फिर उसकी सृष्टि कैसे अपूर्ण है? तथा जब वह सच्चिदानंद है तो उसकी सृष्टि में 5 पाप, दुख, अशुभ आदि का स्थान क्यों है? ईश्वर को विश्व की सृष्टि करने के लिए क्या आवश्यकता थी? यदि उसके बिना वह काम नहीं कर सकता था तो वह अपूर्ण है। यदि वह पूर्ण होकर भी निष्प्रयोजन संसार की रचना करता है तो पागल है। इसी से उन्होंने माना कि सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा नहीं, कार्य कारण के नियम द्वारा हुई है। कार्य कारण का संचालक अगर ईश्वर को माना जाए तो स्पष्ट है कि ईश्वर अपूर्ण है, जिसकी पूर्ति के लिए कार्य कारण का संचालन करता है। इसी से वह ईश्वर की सत्ता को प्रभावित नहीं करते हैं। तभी उन्होंने अनुयायी भिक्षुओं को उपदेश दिया कि ईश्वर पर निर्भर न रहकर स्वयं अपना मार्ग खोजो, आत्मदीपो भव। पर इसकी आलोचना हुई है। एक, अधिकांश विचारकों ने बुद्ध को अनीश्वरवादी कहा है, पर बुद्ध ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि ईश्वर है ही नहीं। वह कर्मवादी होने के कारण चूंकि कर्म पर विश्वास करते हैं थे, अतः ईश्वर विषयक प्रश्न पर मौन हो जाते थे। दो, कुछ मानते हैं कि वह अनीश्वरवादी नहीं थे। कर्मवाद के समर्थक होने के कारण मात्र ईश्वर को सृष्टा, कर्ता, हर्ता आदि छोटे कार्यों से ऊपर की सत्ता मानते थे। उनके लिए ईश्वर अनिर्वचनीय था। उनका धर्म परम तत्व को मानने के कारण ईश्वर की सत्ता का विरोधी नहीं कहा जाता। परम तत्व स्वतः परोक्ष रूप से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, पर उसके परम रूप को। इससे बुद्ध को अनीश्वरवादी नहीं कह सकते। निर्वाण। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ है दुखों का अंत। निर्वाण अभावात्मक नहीं बल्कि भावात्मक है। निर्वाण का अर्थ जीवन निरोध नहीं बल्कि मनोभाव निरोध तथा चित्त वृत्ति निरोध है। अतएव बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण का अर्थ जीवन का नाश नहीं अपितु दुखों का अंत है। बौद्ध धर्म में निर्वाण को धर्म का सर्वोच्च पद कहा गया है। निब्बानम पदम मच्युतम, यह भय रहित है। निब्बानम अकुतो भयम, यह यहाँ तथा वहाँ दोनों स्थानों पर सुख प्रदान करता है। इदानंदति पेचनंदति, अतः यह सुख की अवस्था है, यह परमानंद की अवस्था है। निब्बानम परमम सुखम, संबोधि के संदर्भ में निर्वाण को अतर्क धर्म कहा गया है और उसका वर्णन किया गया है। सर्व संस्कार समथ सर्वोपधि प्रति सीसर्ण तृष्णाक्षय विराग निरोध संसार जात मृत समुत्पन्न कृत संस्कृत और अध्रुव है। उसका निस्सरण है शांत अतर्का वचर ध्रुव अज्ञान असमुत्पन्न अशोक विरज पद। संसार अनित्य होने के कारण मिथ्या है। निर्वाण नित्य और सत्य है। तहिम तन्हिम तन्ही मुषाम यम मो सधम्मम तम सच्चम यम अमो सधम्मम निब्बानम। इसी बात को नागार्जुन और चंद्रकीर्ति ने कहा है। एतद्धि खलु मिक्षव परमं सत्यं यदिदं मोसधर्म निर्वाणं सर्वसंस्कारस्य मृषा मोक्ष धर्माण इति। शंकर वेदांत में निर्विकारता सत्य का लक्षण माना गया है, अतः निर्वाण परम सत्य है। अनन्यथा भावी अच्युत अमृत अत्यंत अप्रमाण अचिंत्य अनंत और अचिंत्य अमृत पद उपनिषदों में प्रयोग किया गया है। यो वै भूमा तदमृतम यदल्पम तन्मर्त्यम। अनेक प्राचीन संदर्भों में निर्वाण को अप्रपंच निष्प्रपंच प्रपंच निरोध अथवा प्रपंच व्युपसम कहा गया है। प्रपंच शब्द उपनिषदों में मिलता है किंतु कम है। इसके अर्थ प्रायः नाम रूप के सदृश है। निर्वाण में समस्त प्रपंच का अतिक्रमण हो जाता है। यत्त आपो च पठवी तेजो वायो नगाधति पमुच्चति। यह समस्त लोक से निराली अपने से जानने की अवस्था उपनिषदों में वर्णित आत्मज्ञान अथवा अपने से जानने से तुलनीय है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यमाग्निः। यह अवस्था अनिर्वचनीय है। एत्थ नामम च रूपम च असे समूप रुज्झति। ऐसी ही तैतृय उपनिषद की उक्ति है, यतो वाचो निवर्तन्ते, अर्थात यहाँ से वाणी निवृत्त हो जाती है। उपनिषदों एवं ब्राह्मण दर्शनों में निर्वाण की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वी कम अक्रॉस सच टर्म्स एज अमृता मोक्षा मुक्ति निःश्रेयस कैवल्य अपवर्ग एज संस्कृत इक्वेलेंट फॉर सॉल्वेशन बट इट इज ओनली इन द एंशियंट पाली एंड संस्कृत वर्क्स ऑन बुद्धिज्म एंड द वर्ड निर्वाण इज फ्रिक्वेंटली एम्प्लॉयड टू मीन सॉल्वेशन। निर्वाण अशेष साधना का लक्ष्य है। अमतो गाधा सभ्य धम्मा निब्बानो गाधम ब्रह्मचर्य। निर्वाण को साक्षात कर्तव्य कहा गया है। वह अनुत्तर उत्तम परम है, वस्तुतः वह इच्छित है, वही वास्तविक प्रयोजन है। इसलिए निर्वाण को अर्थ निपुणार्थ परमार्थ उत्तमार्थ कहा गया है। यह स्मरणीय है कि उपनिषदों में भी निःश्रेयस के लिए अनेक शब्द का प्रयोग मिलता है, यथा हियतेर्थाद्य उप्रेयो वृणीते कठोपनिषद कृतार्थो भवते वीतशोक श्वेताश्वतर उपनिषद। निर्वाण को सतत योगक्षेम कहा गया है, भाज्यम इत्यादि। उपनिषदों में ऐसी उपमा अनेक बार आई है, शोकस्य पारम तमसः पारम अमयसि पारम अभयम तितोषताम पारम मुंडकोपनिषद आदि। निर्वाण को बहुधा संसार का दूसरा घाट कहा गया है इत्यादि। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में निर्वाण को साक्षात सर्वोत्तम स्थायी सुख कहा गया है। एतम रवो पर्वम ज्ञानम एतम सुख भवन भवुन तमम। इससे निरर्थक संस्कारों का शमन हो जाता है और इस कारण उसे शांत अथवा शांति पद कहा गया है, इसे स्थायी सुख कहा गया है। विभाषा में एक सूत्र है कि मार्ग सुख से निर्वाण सुख प्राप्त होता है। महायानी आचार्यों ने भी निर्वाण को सुख ही माना है, अनपाय सुखय करशम शिवम। किंतु इसे सुख वेदना न समझना चाहिए। भगवान ने केवल सुख की तीव्रता को ही सुख में नहीं बताया है, अपितु जहाँ जहाँ सुख उपलब्ध होता है सबको सुख में बताया है। इस विलक्षण सुख की चर्चा उपनिषदों में भी है, यथा तदेदिति मन्यते निर्देश्य परमम सुखम। पूछे कहते हैं कि यह विचित्र सुख है जहाँ कोई कष्ट नहीं होता, जो पाश्चात्य जिज्ञासियों के लिए पूर्णतया अज्ञात है, किंतु पश्चिम में भी ज्ञान से प्राप्त शांति की बात होती रही है। ज्ञान के द्वारा चित्त को विमुक्ति का लाभ होता है। जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, कर्तव्य कर लिया, अब और संसार में क्या करना शेष है, ऐसा समझ लेता है। ज्ञान के द्वारा सभी प्रकार के पापों के क्षीण होने पर विमुक्ति प्राप्त होती है, यही अर्हत्व का लाभ है। विमुक्ति की अवस्था राग द्वेष और मोह के क्षय होने पर आती है, जिसे अमृतत्व कहा गया है। यहाँ सारे बंधन टूट जाते हैं। अतः विमुक्ति को विद्या का उद्देश्य कहा गया है और निर्वाण को विमुक्ति का लक्ष्य। निर्वाण में बुराइयाँ, इच्छाएँ, राग द्वेष, मोह, वासना, तृष्णा, कर्म भाव, नाम रूप, संस्कार, उपाधि आदि अंत का निरोध हो जाता है। इस प्रकार जन्म मरण की परंपरा अविद्या, क्लेश और कर्म पर आधारित है। विद्या से क्लेश क्षीण हो जाता है। इस प्रकार संसार चक्र का निरोध हो जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे ही निर्वाण कहा गया है। चंद्रकीर्ति के शब्दों में तथागत का शासन और उसके धर्मानुधर्म की प्रतिपत्ति पूर्वक जिन पुरुषों ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उनको भगवान ने दो प्रकार का निर्वाण बताया है, शोपधिशेष और निरुपधिशेष। अविद्या, राग आदि क्लेश समुदाय के अंत से शोपधिशेष निर्वाण होता है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ शेष रह जाता है। जिस निर्वाण में लेश मात्र भी शेष नहीं रहता, सब कुछ का अंत हो जाता है, वह निरुपधिशेष निर्वाण है। निर्वाण के विषय में कहा गया है कि निर्वान्ति धीरा यथायम प्रदीपो, अर्थात जिस प्रकार दीपक में डाले गए तेल के समाप्त हो जाने पर वह बुझ जाता है, उसी प्रकार काम क्रोध भोग आदि के नष्ट हो जाने पर आवागमन नष्ट हो जाता है। अतः तृष्णा आदि के नष्ट हो जाने पर ही मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति होती है। अतः बुद्ध के संबंध में निर्वाण का अर्थ है इस ज्योति शिखा के जलते जलते बुझ जाना, अर्थात निर्वाण में जीवन ज्योति जलते जलते बुझ जाती है। इसका शाब्दिक अर्थ भिक्षुओं के लिए चाहे जो रहा हो, पर बुद्ध के जीवन के संदर्भ में निर्वाण संसार के त्याग का बोधक है। निर्वाण की प्राप्ति जीवन काल में ही की जा सकती है। राग द्वेषों पर विजय पाकर शुद्ध तथा शील के साथ आर्य सत्यों का निरंतर ध्यान कर रखते हुए यदि कोई विवेक द्वारा ज्ञान प्राप्त कर ले तो उसका चित्त लोभ मोह राग द्वेष आदि से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को काम रूप अरूप किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रहती है और वह आध्यात्मिक मार्ग पर विजय प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार व्यक्ति सर्वथा मुक्त होकर मोक्ष पा जाता है, वह अरहत हो जाता है। मोक्ष को ही बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा गया है। यह राग द्वेष से उत्पन्न दुख के नाश की अवस्था है। निर्वाण कर्म के त्याग अथवा निष्क्रियता की अवस्था नहीं है। आर्य सत्यों के सम्यक ज्ञान के लिए मन को बाहरी वस्तुओं से हटाना होता है तथा मन को आर्य सत्यों पर ही मोड़ करके उनका निरंतर विचार तथा मनन करना होता है। लेकिन बराबर अभ्यास के द्वारा जब स्थायी रूप से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब सदा अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती। तब जीवन में कर्मों से केवल विरत रहने की ही आवश्यकता पड़ती है। महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद भी अपने कर्मों के साथ धर्म प्रचार आदि करने में लगे रहे। महात्मा बुद्ध ने दो प्रकार के कर्म बताए हैं। एक प्रथम कर्म राग द्वेष तथा मोह के कारण होता है। दो दूसरे प्रकार का कर्म बिना राग द्वेष तथा मोह के होता है। पहले कर्म से हमारी अनुरक्ति विषयों में बढ़ती है तथा ऐसे संस्कार उत्पन्न होते हैं कि जिनके कारण हमें दूसरा जन्म लेना ही पड़ता है। किंतु दूसरे प्रकार का कर्म के प्रति बिना आसक्ति से किया जाता है, उसके कारण फिर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उदाहरणार्थ यदि बीज को धरती में बो दिया जाता है तो वह अवश्य जमता है, लेकिन उसे यदि भूनकर बोया जाए तो कदापि नहीं जम सकता। यद्यपि निर्वाण प्राप्त करने के बाद बुद्ध की भी इच्छा हुई थी कि निष्क्रिय रहें, दूसरे को निर्वाण का रास्ता वे बताना ही नहीं चाहते थे, लेकिन दुख के समुद्र में डूबते हुए मनुष्यों के प्रति उनमें दया का संचार हुआ और वे लोक कल्याण में लग गए। बुद्ध ने संसार के दुख सागर को जिस नाव से पार किया था उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे उन्होंने जीवों के कल्याण में प्रयोग किया। निर्वाण का स्वरूप तर्क युक्त होते हुए भी उसकी सत्ता निर्विवाद है। निर्वाण में दुखों का अंत हो जाता है, किंतु सब कुछ का अंत नहीं होता। उपनिषदों में ब्रह्म को प्रायः सद्रूप कहा गया है। दूसरी ओर निर्वाण अभाव रूप नहीं होते हुए भी भाव रूप है, नहीं कहा जा सकता। उपनिषदों में ब्रह्म को जगत का कारण बताया गया है। निर्वाण को केवल जगत के लक्ष्य के रूप में ही संकेतित किया गया है। किंतु यहाँ पर भी प्राचीन उपनिषदों एवं बौद्ध संदर्भों में जगत का मिथ्या रूप शुद्ध से ज्ञात होने पर भी स्पष्ट कहा नहीं जा सकता है। इसलिए उपनिषदों में जगत का कारण ब्रह्म इसे केवल प्रपंचों के प्रश्न रूप में निर्वाण से विभाजित करता है। अनेक इतिहासकारों ने निर्वाण की अवधारणा की आलोचना की है। कुछ मानते हैं कि निर्वाण में व्यक्तिगत आत्मा विश्वात्मा में समाहित हो जाती है, जैसा वेदांत दर्शन में। दूसरे इसे चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था मानते हैं, जहां जीवन प्रेम आदि सभी कुछ समाप्त हो जाता है। पर पहले के विषय में कह सकते हैं कि यह बौद्ध विचारों से भिन्न है, क्योंकि बुद्ध आत्मा और ब्रह्म के विषय में मूक है। दूसरे के संदर्भ में कह सकते हैं कि ऊपर देखा गया है कि निर्वाण क्रियाओं का अंत नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव ने बौद्ध दर्शन में निर्वाण विषय पर कहा है कि निर्वाण एक अदृश्य स्थान है, जहां आर्य तिरोहित हो जाते हैं। उदान में बुद्ध कहते हैं कि जैसे हम यह नहीं जानते कि निर्वापित अग्नि कहाँ जाती है, उसी प्रकार हम नहीं कह सकते हैं कि वह विमुक्त आर्य कहाँ जाते हैं, जिन्होंने तृष्णारूपी ओघ का समतिक्रम किया है और जिन्होंने अकोप्य क्षेम का लाभ किया है। निर्वापित होने पर अग्नि अदृश्य हो जाती है, अर्थात अग्नि नहीं रहती। इसी प्रकार परिनिर्वित आर्य जीव पुद्गल चित्त नहीं रह जाता। अभाव के जितने परिचित आकार हैं या जितनी कल्पना हो सकती है, उनका अतिक्रमण करना ही मोक्ष है, यह अभाव नहीं है। आचार्य जी यहाँ बहुत कुछ वेदांत दर्शन से प्रभावित लगते हैं। बौद्ध धर्म के चारों निकाय वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार तथा माध्यमिक सभी निर्वाण को मनुष्य का परम लक्ष्य मानते हैं, किंतु सभी के मत भिन्न हैं। यद्यपि सभी मानते हैं कि निर्वाण अमृत है, निरोध परम क्षेम तथा विराग है, उसमें सभी दुखों का निरोध है, वह परम शांति है, किंतु इन सभी में इतना मतैक्य होते हुए भी भिन्नता है। वैभाषिकों के अनुसार निर्वाण परम प्रतिवेद्य विद्या प्रेम प्रणीत और मुक्ति है। उसको उपलब्ध करने वालों का ज्ञान शुद्ध स्वभाव और प्रत्यक्ष है। शुद्ध निर्वाण में केवल धार्मिकता शेष रहती है, ये निर्वाण शाश्वत और वास्तविक मानते हैं। सौत्रांतिक मत में निर्वाण निरोध मात्र है, यद्यपि इनमें कुछ निर्वाण में एक सूक्ष्म किंतु सर्वथा कुंठित चेतना की स्थिति स्वीकार करते हैं। विज्ञानवादियों के अनुसार बोधिसत्व आध्यात्मिक वृत्ति के द्वारा महापरिनिर्वाण की प्राप्ति करता है। निर्वाण स्वभावतः विशुद्ध है, किंतु अविद्या से उसका स्वस्थ मार्ग ज्ञान के द्वारा ही संभव है। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि में चार प्रकार के निर्वाण कहे गए हैं, अनादिकालिक प्रकृतिबद्ध निर्वाण, सोपधि शेष निर्वाण, निरुपधि शेष निर्वाण, अप्रतिष्ठित निर्वाण। इनमें पहला निर्वाण शांत प्रकृति का है, शेष तीन आध्यात्मिक विकास में समता के क्रमिक प्रकाश का। निर्वाण परमार्थ और शुद्ध लक्षण है, वही विशुद्ध धर्म केंद्र है। निर्वाण और संसार में कोई आत्यंतिक भेद नहीं है। जहाँ अविद्या के द्वारा आरोपित परतंत्र लक्षण संसार है, वहीं प्रज्ञा के द्वारा प्रकट उपशांत लक्षण निर्वाण है। निर्वाण से सबकी मुक्ति होती है, यह परम परमात्म तत्व की ओर जाता है और प्रपंचों का नाश करता है। माध्यमिकों में भी निर्वाण और संसार में भेद नहीं माना जाता। निर्वाण को वे भावाभाव निर्मुक्त शून्य स्वरूप कहते हैं। समस्त स्वस्थ धर्म वस्तुतः पृथक पृथक स्वभाव से रहित है। स्वभाव शून्यता अथवा ईश्वर के साथ अद्वैत होना ही निर्वाण है। अतः वैभाषिक निर्वाण को द्रव्य पद या भाव मानते हैं, सौत्रांतिक निर्वाण को अभाव मानते हैं, योगाचर इसे भाव और अभाव दोनों बताते हैं। माध्यमिकों के अनुसार संकुचित दृष्टि से जो संसार है, वही व्यापक दृष्टि से निर्वाण है। हीन यानी का मत है कि निर्वाण अर्हत्व है, प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्वाण स्वयं प्राप्त करना है। एक के निर्वाण से दूसरे को निर्वाण नहीं मिलता, किंतु महायान के अनुसार यह निर्वाण स्वार्थ मूलक तथा हीनतर है। वे कहते हैं कि जिस निर्वाण में जीव मात्र को ही शांति मिले, उससे क्या लाभ। लेकिन इस प्रकार की शंका व्यर्थ है। वास्तव में निर्वाण से दो लाभ है, निर्वाण प्राप्त कर लेने से पुनर्जन्म और उससे उत्पन्न दुख संभव नहीं होता। दो, जिसे निर्वाण मिल जाता है उसका जीवन मृत्यु पर्यंत शांति और पूर्ण ज्ञान के साथ व्यतीत होता है। प्रसिद्ध बौद्ध धर्मोपदेशक नागसेन ने निर्वाण की अवस्था का वर्णन इस प्रकार किया है, निर्वाण समुद्र की तरह गहरा, पर्वत की तरह ऊंचा तथा मधु की तरह मधुर है। जिन्हें निर्वाण का अनुभव नहीं वे किन्हीं भी उपमाओं से इसे व्यक्त नहीं कर सकते। अंधे को भला रंग का ज्ञान कैसे कराया जा सकता है? जिस प्रकार ब्रह्म अकथनीय है उसी प्रकार निर्वाण अकथनीय है, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। अतः निर्वाण उपाधि रहित अवस्था है, इसका वर्णन असंभव है। यह उपनिषदों की तुरीयावस्था की भांति है। बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है कि स्वास्थ्य की प्राप्ति का बड़ा लाभ है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है, विश्वास ही सबसे बड़ा संबंधी है और निर्वाण ही परम सुख है। आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमम धनम, विस्सामम परमा जाति, निब्बानम परमम सुखम। अतः निर्वाण भावात्मक है, यह पूर्णता का लक्ष्य है, शून्यता का नहीं। निर्वाणा इज अवर इंटरनल कंडीशन ऑफ बीइंग, फॉर इट इज नॉट अ संस्कारा और व्हाट इज मेड और पुट टुगेदर विच इज impermanent, it continues while its expression change. This is what lies behind the skandhas, which are subject to birth and decay. Buddha does not attempt to define it, since it is the root principle of all, and so it is indefinable. इससे स्पष्ट है कि बौद्ध ग्रंथों में निर्वाण को नित्य और शांत माना गया है, जो सत्य है। निर्वाण कार्य कारण परिधि के बाहर है एवं विशिष्ट होने के कारण वाणी से अगोचर है, उसका केवल अनुभव संभव है। इस प्रकार अवर्णनीय होते हुए भी वह जीवन का परम लक्ष्य है। निर्वाण का साक्षात्कार संबोधि में होता है और उसकी प्राप्ति के साथ ही क्लेश कर्म और दुख से मुक्ति हो जाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है और मृत्यु उतनी ही निरर्थक होती है जितना जन्म। निर्वाण में संसारी का परम अंत सत्ता में वैसे ही हो जाता है जैसे अग्निशिखा को अपने मूल में। स्पष्ट लौकिक चेतना से के परिचित शब्दों में निर्वाण का वर्णन किया जा सकता है। उसकी अनंतता का सर्वोत्तम संकेत मौन के द्वारा हो सकता है। श्री अरविंदो ने इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि एक असंग परमार्थ ने समस्त का निषेध कर दिया, सम्मूढ़ जगत को अपने अद्वैत से मिटा दिया और आत्मा को अपनी शाश्वत शांति में डुबा दिया। शून्यवाद यह बौद्ध दर्शन का एक मुख्य संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन माने जाते हैं, पर डॉक्टर चंद्रधर शर्मा तथा डॉक्टर वी एस भट्टाचार्य इन्हें प्रवर्तक नहीं वरन क्रमबद्ध रूप में उपस्थित करता मानते हैं, क्योंकि नागार्जुन के पहले महायान सूत्र में शून्यवाद का उल्लेख है, जिसे नागार्जुन ने जनता के सम्मुख उचित रूप से रखा और प्रसारित किया। शून्यवाद बौद्ध धर्म दर्शन का दर्शन में भौतिक पदार्थों को व्यक्त करने की एक ऐसी विधि है जिसमें सभी भौतिक तत्वों को अंत में शून्य में अंतर्निहित कर लिया जाता है। इस धर्म दर्शन में प्रयुक्त शून्य का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण सत्ता का निषेध, कुछ लोग मानकर इसे सर्ववैनाशिकवाद भी कहते हैं, पर यह भ्रामक है क्योंकि ऐसा नहीं है कि शून्यवाद किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं मानता। व्यवहार में शून्य का अर्थ रिक्त एवं शून्यता को भी बौद्ध दर्शन में स्वीकार नहीं किया गया है। वस्तुतः बौद्ध धर्म दर्शन में शून्यवाद का प्रयोग मात्र भौतिक पदार्थों के निर्णय के लिए किया जाता है, पर यह परम तत्व के निर्णय के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है। परम तत्व तो मन तथा वाणी से परे अनिर्वचनीय माना गया है। यह अनिर्वचनीय तत्व ही शून्यवाद का शून्य है, जबकि इस परम तत्व को अद्वैत वेदांत में केवल सत और असत से विमुक्त माना गया है। शून्यवादियों के अनुसार किसी भी वस्तु का स्वरूप चार प्रकार से बताया जा सकता है, एक अस्ति, दूसरा नास्ति, तीसरा अस्ति च नास्ति च, चौथा न अस्ति न च नास्ति, अर्थात एक वस्तु है, दो वस्तु नहीं है, तीन वस्तु है और नहीं भी है, चार वस्तु न है और न नहीं है। बौद्ध धर्म दर्शन का सर्वाधिक विवाद का विषय यही शून्यवाद है। नागार्जुन से प्राचीन हीनयानी संप्रदायों में भी शून्यता और नैरात्म्य को एक सीमित अर्थ में ग्रहण किया गया था। मनुष्य एक प्रकार का संघात एवं संतान है, वह प्रभावगत समूह है। उसके विभिन्न स्कंधों में किसी स्थिर आत्मा अथवा जीव की कल्पना नहीं करनी चाहिए। देह इंद्रियां अथवा मन पृथक पृथक सत्ता का है, जिनकी समष्टि ही लोक प्रचलित आत्मा अथवा अहम की प्रतीति का आधार है। इसे बौद्ध धर्म में पुद्गल नैरात्म्य कहा गया है। स्कंध धातु आयतन आदि में किसी जीव अथवा पुद्गल का अभाव ही तद्गत की शून्यता है। इस प्रकार यह विचार है कि हीन यान में शून्यता अथवा नैरात्म्य का अर्थ प्रायः जीव अथवा आत्मा का अभाव मात्र माना गया है। प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में शून्यता अथवा नैरात्म्य की इस धारणा का विस्तार किया गया है। किसी भी पदार्थ का अपना कोई स्वभाव नहीं है, यह स्वभाव शून्यता ही वास्तविक शून्यता अथवा नैरात्म्य शून्यता माना गया है। इस प्रकार के विस्तृत अर्थ में न केवल जीव अथवा आत्मा का अपितु समस्त पदार्थों का लोप हो जाता है। इस प्रकार प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में एक और अभावात्मक शून्यता का यह सर्वांगीण विराट रूप प्रदर्शित किया गया है, वही दूसरी ओर शून्यता की प्रज्ञा पारमिता से अभिन्नता प्रतिपादित किया गया है। प्रज्ञा पारमिता वस्तुतः निर्विकल्पक साक्षात्कारात्मक ज्ञान है, जिसमें समस्त भेद द्वैत प्रमेयता एवं अभिधेयता समाहित हो जाती है। निर्विकल्पे नमस्तुभ्यं प्रज्ञा पारमिते अमिते। प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में अनेक स्थलों पर 18 प्रकार की शून्यता का उल्लेख है। अध्यात्म शून्यता, बहिर्धा शून्यता, अध्यात्म बहिर्धा शून्यता, शून्यता शून्यता, महाशून्यता, परमार्थ शून्यता, संस्कृत शून्यता, असंस्कृत शून्यता, अत्यंत शून्यता, स्वलक्षण शून्यता, अनवराग शून्यता, अनवकार शून्यता, प्रकृति शून्यता, सर्वधर्म शून्यता, अनुपलम्ब शून्यता, अभाव शून्यता, सर्वभाव शून्यता एवं अभाव स्वभाव शून्यता। शून्यता के ये विभिन्न प्रकार शून्यता के अंदर किसी प्रकार का वास्तविक वर्गीकरण उपस्थित नहीं करते। इस प्रकार यदि शून्यता को केवल अभाव कहा जाए तो प्रश्न उठता है कि किसका अभाव। उसके उत्तर में नाना पदार्थों का परिगणन कर उनका अभाव बताया जा सकता है। इससे प्रतीत होता है कि भाव जगत की छाया के समान एक अभाव जगत की भी कल्पना है, किंतु माध्यमिकों ने इसे न अभाव की पदार्थता माना है न भाव की। विभिन्न भाव पदार्थों के अभाव को शून्यता से अभिन्न मानते हैं। यदि किसी रूप पूर्व स्वभाव के बिना केवल विशुद्ध अभाव निरर्थक है, तो यह भी मानना होगा कि स्वभाव का निर्धारण बिना अभाव के आवरण के असंभव है। स्वभाव परिच्छेद स्वयं प्रतिषेध पूर्वक है। असत्ता की रेखा से बचे हुए सत्तामय जगत का चित्र आरेखित होता है। यह स्वभाव शून्यता पारमार्थिक शून्यता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि शून्यता सचमुच अग्नि की तरह सर्वग्राशनी है, यहाँ तक कि आत्मग्राशनी भी है, और उसका निष्कर्ष मौन में ही हो सकता है। किंतु शून्यता के सिद्धांत का नियमबद्ध दार्शनिक प्रतिपादन सर्वप्रथम नागार्जुन ने किया। उन्होंने अपने तर्क से ही इसका खंडन किया और शून्यता को प्रतीत्य समुत्पाद से अभिन्न बताया। उनके शब्दों में यह प्रतीत्य समुत्पाद शून्यताम ताम प्रचक्षमहे सा प्रज्ञप्ति रूपादाय प्रतिपत्सैव मध्यमा। आचार्य नरेंद्र देव का विचार है कि जो स्वभाव से शून्यतावादी है उनके लिए किसी कार्य को बाधा नहीं पहुंचती, क्योंकि जो प्रतीत्य समुत्पाद है वही शून्यता है, अर्थात स्वभाव से भावों का अनुत्पाद है। उसकी पुष्टि में वे भगवान बुद्ध के इस कथन का प्रमाण देते हैं। यह प्रत्ययैर जायति सह्य जातो न तस्य उत्पादु स्वभावो स्वभावतोस्ति। यह प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो यह शून्यतो जानति सो अप्रमत्तः। अर्थात जिसकी उत्पत्ति प्रत्ययवश कारणानुसार है वह अजात है, उसका उत्पाद स्वभाव से नहीं है। जो प्रत्यय के अधीन है वह शून्य है। जो शून्यता को जानता है वह प्रमाद नहीं करता। माध्यमिक सूत्रों में नागार्जुन कहते हैं कि शून्यता अर्थात धर्मता चित्त और वाणी का विषय नहीं है, यह निर्माण सदृश अनुत्पन्न और अनिरुद्ध है। इसकी पुष्टि निम्न कथन से होती है। निवृत्तम अभिधातव्यम निवृत्ते चित्त गोचरे अनुत्पन्ना निरुद्धा ही निर्वाणमिव धर्मता। किंतु नागार्जुन के समय शून्यता पर तर्क ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि शून्यतावादी किसी भी पक्ष को अपना लेता तो शून्यता की हानि हो जाती। जब प्रतिज्ञा ही नहीं की जा सकती तो मुक्ति के द्वारा उसका साधन दूर की बात है। डॉक्टर पांडे का मत है कि वस्तुतः शून्यता का उपदेश सब दृष्टियों से छुटकारे के लिए है। माध्यमिक सूत्र के तथागत परीक्षा नामक प्रकरण में नागार्जुन का कथन है कि निष्प्रपंच तथागत के संबंध में कोई भी कल्पना संभव नहीं है। तथागत न शून्य है न अशून्य, न उभय और न अनुभय। जो प्रपंची लोग तथागत के संबंध में विविध प्रकार की परिकल्पना करते हैं वे मूढ़ पुरुष तथागत की गुण समृद्धि से दूर हैं। जिस प्रकार जन्मांध सूर्य को नहीं देखता उसी प्रकार वे बुद्ध को नहीं देखते। नागार्जुन कहते हैं कि तथागत का जो स्वभाव है वही स्वभाव इस जगत का है। जैसे तथागत निस्वभाव है उसी प्रकार यह जगत भी निस्वभाव है। प्रज्ञा पारमिता में कहा गया है कि सर्वधर्म माया मुक्त है, सम्यक संबुद्ध भी माया मुक्त है, निर्वाण भी माया मुक्त है, और निर्वाण से भी विशिष्टतर यदि कोई धर्म हो तो वह भी माया से ऊपर है। माया और निर्वाण एक है। माध्यमिक वृत्ति के एक सूत्र में कहा गया है तथागत अनाश्रव कुशल धर्म के प्रतिबिंब हैं, न तत है न तथागत, सब लोकों में बिंब ही दृश्यमान है। इस तरह यह ज्ञात होता है कि शून्यतावादी के मत में बुद्ध निःस्वभाव हैं, अर्थात वस्तु के बंधन से मुक्त हैं। परमार्थ सत्य की दृष्टि से तथागत और जगत का यही स्वभाव वास्तविक रूप है। विज्ञानवादियों के अनुसार शून्यता में लक्षणों का अभाव है और तत्वतः यह एक अलक्षण वस्तु है, क्योंकि शून्यता की संभावना के लिए दो बातों का होना परम आवश्यक है। एक उस आश्रय का अस्तित्व जो शून्य है, और दो किसी वस्तु का अभाव जिसके कारण हम कह सकते हैं कि वह शून्य है। पर यदि यह इन दोनों का अस्तित्व न माना जाए तो शून्यता असंभव है। शून्यता को विज्ञानवादी वस्तु मात्र मानते हैं। वस्तु मात्र चित्त विज्ञान या आलय विज्ञान है, जिसमें साश्रव बीज एवं अनाश्रव बीज का संग्रह रहता है। साश्रव बीज प्रवृत्ति धर्मों का और अनाश्रव बीज निवृत्ति धर्मों का कारण है। जो कुछ है वह चित्त का ही आकार है। जगत चित्त मात्र है। चित्त के अतिरिक्त अन्य का अभ्युदय विज्ञानवादियों को माने नहीं है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव शाश्वत और लक्षण रहित है। जो लक्षण मुक्त हो जाता है तो उसे माया कहते हैं, और वह जब वह अलक्षण है तब वह शून्य के समान है। विग्रह व्यावर्तनी नाम के लघु ग्रंथ में नागार्जुन ने शून्यवाद की न्याय युक्त विवेचना पर विचार किया है। प्रारंभ में ही उन्होंने अपने विरोध में दी गई प्रधान उक्ति का उल्लेख किया है। यदि सभी पदार्थों में अपना स्वभाव अविद्यमान है तो तुम्हारे शब्द भी स्वभावहीन होने के कारण स्वभाव के खंडन में असमर्थ हैं, और दूसरी ओर यदि तुम्हारी बात स्वभावयुक्त है तो तुम्हारी पिछली प्रतिज्ञा खंडित हो जाती है। चंद्रकीर्ति ने भी इस शंका को इस प्रकार प्रस्तुत किया है। सब पदार्थों के अनुत्पाद का सिद्धांत प्रमाण जन्य है अथवा अप्रमाण जन्य। पहले विकल्प में प्रमाणों के लक्षण आदि प्रस्तुत करना चाहिए, दूसरे विकल्प में सिद्धांत का खंडन किया जाता है। इस कठिनाई का उत्तर देते हुए नागार्जुन कहते हैं कि शून्यवादी के अपने वचन की शून्यता उचित है, किंतु उसके वचन और अन्य पदार्थ हेतु प्रत्यय सामग्री की उपेक्षा रखते हुए समान कोटि के हैं। सभी समान रूप से शून्य हैं। वस्तुतः विरोधियों ने शून्यता का सिद्धांत ठीक नहीं समझा। पदार्थों का प्रतीत समुत्पाद ही शून्यता है, क्योंकि जिसकी सत्ता परतंत्र अथवा दूसरे पर निर्भर होती है उसका न अपना वास्तविक स्वभाव रहता है और न इसे स्वीकार ही किया जा सकता है। यदि पदार्थों का वास्तविक स्वभाव रहता हो तो उन्हें किसी दूसरे आधार की आवश्यकता न होती। उनकी यह निःस्वभावता ही शून्य है। शून्यवादी का वचन है भी प्रतीत्य समुत्पन्न है और उसी प्रकार शून्य है जैसे कि अन्य पदार्थ। रथ पट घट आदि पदार्थ प्रतीत्य समुत्पन्न होने के कारण जल हटाने आदि का अपना अपना कार्य करते हैं। ऐसे ही शून्यवादी की उक्ति भी साधन में अपना कार्य करती है। जिस प्रकार जादू का बनाया हुआ एक आदमी वैसे ही बने दूसरे व्यक्ति का निषेध करे, ऐसे ही शून्यवादी के द्वारा पदार्थों के स्वभाव का निषेध है। बौद्ध धर्म का शून्यवादी दर्शन विनाशवादी नहीं है, बल्कि यह इंद्रियों से देखे जाने वाले जगत को असत्य मानता है। प्रत्यक्ष से परे अदृश्य सत्य को सत्ता कहा गया है, लेकिन उसे अवर्णनीय बताया गया है। उसे मानसिक अथवा बाह्य वस्तु भी नहीं कहा गया है। अवर्णनीय होने के कारण ही उसे शून्य कहा गया है। अतएव शून्यवाद की दार्शनिक पृष्ठभूमि भावात्मक है, अभावात्मक नहीं। चूंकि शून्यवाद में वस्तु सत्ता को अस्ति है और नास्ति नहीं है, शुद्ध अशुद्ध इन दोनों सीमाओं से भिन्न माना गया है, अतएव इस दर्शन को माध्यमिक दर्शन कहा गया है। बुद्ध की मध्यमा प्रतिपत्ति के समान इस मत के तत्व को दोनों सीमाओं में से स्वतंत्र रखा गया है। इसकी गहनता को सिद्ध करने के लिए प्रतीत समुद्पाद को की सहायता ली गई है। नागार्जुन के अनुसार शून्यवाद का ही सिद्धांत प्रतीत समुद्पाद है। वस्तुओं के सभी गुणों की उत्पत्ति दूसरों पर निर्भर होती है। जितने गुण हैं सभी शून्य हैं। अतएव वस्तुओं के अस्तित्व का दूसरे पर निर्भर होना तथा उसकी निरंतर परिवर्तनशीलता तथा अवर्णनीयता को शून्य कहा गया है। शून्यवाद में एकांतिक मतों को स्थान नहीं प्राप्त है, अतः शून्यवाद को इसके आधार पर ही मध्यम मार्ग कहा गया है। यह वस्तुओं को न पूरा निरपेक्ष मानता है और न उसे आकारहीन मानता है, बल्कि यह मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर रहता है। अतः इसके कारण ही वस्तुओं का स्वरूप अवर्णनीय माना गया है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह सत्य है अथवा असत्य। अतएव यह प्रतीत समुत्पाद से उत्पन्न सिद्धांत है, इसलिए इसको माध्यमिक भी कहा गया है। ये माध्यमिक वस्तु जगत के साथ ही साथ परमार्थिक सत्ता पर भी विचार करते हैं। प्रतीत समुत्पाद का नियम तो केवल व्यवहारिक जगत के लिए ही स्वीकार किया गया है, किंतु इसके अनुसार सभी धातुओं को अनित्य माना गया है। इंद्रियों द्वारा दिखने वाला जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। यह प्राप्त ज्ञान अनुभूति कहा गया है। अनुभूति को ही शून्यवाद में पारमार्थिक कहा गया है। पारमार्थिक बौद्ध धर्म में दृश्यमान जगत से परे नित्य निरपेक्ष और लौकिक धर्म से भी परे बताया गया है। अतएव हम देखते हैं कि माध्यमिकवादी सापेक्ष निरपेक्ष नित्य तथा अनित्य दोनों सत्यों को स्वीकार करते हैं। अतएव नागार्जुन का कहना है कि दो प्रकार के सत्य हैं जिन पर बुद्ध के धर्म संबंधी उपदेश निर्भर हैं। एक संवृत्ति सत्य है जो सांसारिक तथा साधारण वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा पारमार्थिक सत्य जो बुद्धि से परे अवर्णनीय एवं निस्वभाव है। एक संवृत्ति सत्य। चंद कित्ती के अनुसार संवृत्ति सत्य का अभिप्राय लोक व्यवहार की ओर है। इस सत्य के अंतर्गत संपूर्ण व्यवहारिक जगत का, जिसमें अभिधान अभिधेय ज्ञान ज्ञेय आदि भेद को माना जाता है तथा समावेश किया जाता है। चूंकि माध्यमिक दर्शन में अज्ञान को व्यवहारिक जगत का एकमात्र कारण माना गया है, अतः संवृत्ति सत्य को अज्ञान मात्र स्थापित सत्य भी कहा गया है। जानने योग्य संपूर्ण जगत को संवृत्ति सत्य के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। दो पारमार्थिक सत्य। पारमार्थिक सत्य बुद्धि से परे अवर्णनीय एवं निःस्वभाव माना गया है। इस अवस्था में ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय आदि के भेद का पूर्ण लोप रहता है, जिसके कारण उसे शब्द से अवर्णनीय माना गया है। यह एक ऐसी काल्पनिक अवस्था है जिसका कोई पूर्व कारण नहीं है, जिसमें भेद का कोई स्थान नहीं है। यह प्रपंच रहित शांत एवं कल्याणकारी रूप है। प्रपंचोपशमम शिवम। वास्तव में पारमार्थिक सत्य निर्वाण रूप ही है। इस सत्य को माध्यमिक दर्शन में शून्यता तथता भूतिकोटि धर्म धातु आदि भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किया गया है। नागार्जुन के अनुसार बिना व्यवहार की सहायता के परमार्थ का ज्ञान असंभव है। निर्वाण की प्राप्ति केवल पारमार्थिक सत्य के ज्ञान से ही होती है। नागार्जुन ने स्पष्ट कहा है, व्यवहार मनाश्रित्य परमार्थो न देश्यते, परमार्थ मनागम्य निर्वाणम नाधिगभ्यते। अर्थात व्यवहार का सहारा लिए बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता है। परमार्थ को न समझने पर निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता है। निर्वाण की अवस्था असाधारण है, यह हमारे लिए कल्पनातीत है। उसका वर्णन केवल नकारात्मक ही किया गया है। नागार्जुन ने कई नकारात्मक शब्दों के द्वारा निर्वाण का वर्णन किया है, यथा जो अज्ञात है, जिसका विनाश नहीं है, जो अनित्य भी नहीं, जो अनित्य भी नहीं, जो विरुद्ध नहीं है, जो उत्पन्न भी नहीं, उसका नाम निर्वाण है। निर्वाण से तथास्थित स्वरूप को जानने वाले का नाम तथागत कहा गया है। इस तथागत के स्वरूप का वर्णन करना बौद्ध धर्म में असंभव माना गया है। नागार्जुन ने कहा है कि शून्यता प्रतीत्य समुत्पाद है, यह सापेक्षवाद का सिद्धांत है, यह मध्य मार्ग है जो भाव और अभाव दोनों के बीच है तथा दोनों से परे भी। नागार्जुन के शून्यवाद में शून्य ही एकमात्र तत्व माना गया है। इसी के संबंध में नागार्जुन ने कहा है, नसन्नाशन्न सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम चतुष्कोटि वनिर्मुक्तम तत्त्वम माध्यमिका विदुः, कि वह न सत है न असत है, न सत और सत दोनों है, न दोनों से भिन्न ही है। इस प्रकार इस चारों संभावित कोटियों से विलक्षण ही एक तत्व है, जिसे माध्यमिकों ने अपना परम तत्व कहा है। समस्त शून्यवाद का विकल्प ढूंढना तर्क बुद्धि को सत्य के क्षेत्र से बाहर रख देता है। अतएव नागार्जुन शून्यता की सिद्धि तर्क बुद्धि एवं उसके स्वीकृत सिद्धांत के ही द्वारा करते हैं। किसी भी वस्तु की सत्यता स्वीकार नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे स्वीकार करने पर अपरिहार्य रूप से विरोध प्रबल हो जाता है। इस प्रकार के तर्क को नागार्जुन और उनके अनुयायी प्रसंगापादन अथवा प्रासंगिक कहते हैं। आधुनिक परिवेश में नागार्जुन की प्रणाली डायलेक्टिकल है। उद्योतकर आदि ने माध्यमिक सम्मत इस प्रकार की तर्क प्रणाली को केवल नास्तिक वितंडा कहकर उसका खंडन किया है।